الآخر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے تین چار دن سے کچھ طبیعت ناساز ہے اور آج بھی طبیعت کمزور ہوئی ہے، جس کا اصل تقاضا تو یہ تھا کہ آج مجلس سے معذرت کر لی جاتی، لیکن یہ خیال ہوا کہ الحمدللہ ایسی بات تو ہے نہیں کہ مسجد تک نہ جا سکے اور نہ ایسی بات ہے کہ کوئی بات چیت نہ کر سکے، کمزوری اور تھوڑی سی طبیعت کی خرابی ہے تو جتنا موقع مل جائے غنیمت سمجھا جائے، کیونکہ جب اللہ کے دین کے طلب لے کر لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس میں شرکت بذات خود ایک نعمت اور سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے اجتماع پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. حدیث میں بڑی اس کی فضیلت آئی ہے کہ وہ جو مجمع اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کے مذاکرے کے لیے جمع ہوا ہو تو اس پر اللہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں. بڑی فضیلت سے حدیث میں آئی تو خیال ہوا کہ یہاں پر حاضری کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس مجمع میں شرکت کی سعادت سے محرومی نہ ہوگی، دوسرے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کے دین کی طلب کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی طلب کا اور اس طلب کی برکات کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے. یعنی جب بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں کسی دین کے ذکر کے لیے، دین کے طلب کے لیے، تو किसी के तलब कम है, किसी के ज्यादा है, किसी के दिल में अल्लाह जल्ला जलालहू की याद, उसकी उसका जिक्र, उसकी फिक्र और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू और इनाबत बड़ी हुई है, किसी की उतनी बड़ी हुई नहीं है, कम है, दर्जात मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इत्तेबा की बरकत से एक दूसरे के तलब का और बरकतों का एक दूसरे के ऊपर अक्स डाल। यहां तक कि अगर कोई शख्स पूरी सच्ची तलब लेकर भी ना आया हो तो अल्लाह ताला उसको भी मालूम नहीं करो। चुनाचे हदीस में जिक्र आया है कि अल्लाह जल्ला जलालहु के नेक बंदे अल्लाह ताला के जिक्र के लिए जमा है, तो जमा है तो फरिश्ते भेजे जाते हैं और जब फरिश्ते वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कौन से किस किन लोगों को देख रहे हो, क्या हाल था उनका। तो वो कहते हैं कि जी वो तो आपके जिक्र में मशगूल थे, तस्बीह में मशगूल थे। वाह ताला पूछते हैं कि क्या उन्होंने अल्लाह ताला को देखा है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला खुद जानते हैं लेकिन अपनी रहमत का मुजाहरा करने के लिए फरिश्तों से पूछते हैं क्या अल्लाह ताला को देखा है। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो उन्होंने देखा तो है नहीं आपको। अच्छा अगर मुझे देखा होता तो मेरा कितना जिक्र करते, मेरी कितना मेरी कितनी तस्वीर करते, मुझसे कितना खौफ रखते, कितना मेरे मुझसे खशियत उनके दिल में होती। कहा कि हाँ अगर देख लिया होता तो पता नहीं उनसे जिक्र फिक्र का क्या हाल होता। कई चीजें पूछी और पर पूछा कि अच्छा क्या मांग रहे हैं वो, ये लोग जो जमा हुए हैं क्या मांग रहे हैं। तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि अल्लाह जन्नत मांग रहे हैं। तो बारी ताला फरमाते हैं कि क्या जन्नत देखी है उन्होंने, क्योंकि देखी तो है नहीं। अच्छा अगर देख ली होती तो फिर कितनी उनके दिल में तलब होती जन्नत की। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह अगर देख ली होती पर तो बहुत ही ज्यादा इश्तियाक के साथ, बहुत ज्यादा इंतजार के साथ, बड़े इल्हावजारी के साथ मांगते। फिर तो अच्छा कितनी से पना मांगते हैं कि जी वो जहन्नम से पना मांगे, कि देखिए जहन्नम उन्होंने जी देखी तो है ना। अच्छा अगर देख ली होती तो कितना उससे पना मांगते, कितना उससे डरते। क्या बेशक अगर देख ली होती तो उसका और ज्यादा पना मांगते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे ये बंदे मेरे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाए हुए हैं, मेरे देखे बगैर मेरी मेरा जिक्र कर रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, मेरे देखे बगैर मुझसे डर रहे हैं, मेरे खशियत उनके दिल में है, मेरी तरफ रुजू कर रहे हैं, जन्नत देखे बगैर जन्नत मांग रहे हैं, दोजख देखे बगैर दोजख से पना मांग रहे हैं, तो फिर मैं भी तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने इन सब की मगफरत कर, सबको माफ कर, सबके मफरत। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह आपने फरमाया कि सबकी मफरत कर दी, तो इसमें एक आदमी ऐसा भी था जो असल में कोई दीन की तलब लेकर नहीं आया था और जिक्र करने के मकसद से नहीं आया था, वैसे ही आके बैठ गया था, वैसे ही बात को बैठ गया। तो बारी ताला जवाब फरमाते हैं हुमुल कौमु ला यशका जलीसुहुम, ये ऐसे लोग हैं कि इनके पास बैठने वाला भी नामुराद नहीं, यानी अगर से वो वैसी तलब लेकर नहीं आया, वैसा इरादा लेकर नहीं आया, लेकिन क्योंकि इनके साथ आके शामिल हो गया इनके पास आके बैठ गया तो मैं उसके साथ भी वैसे ही मामला करूंगा जैसे कि सच्चे तलब वालों के साथ करता हूं, इनको भी नामुराद नहीं करूंगा, उसकी भी दुआएं कबूल करूंगा। तो ये मैं कह रहा था कि जब अल्लाह के दीन के जिक्र के लिए लोग बैठते हैं तो उनका आपस में एक दूसरे की बरकतों का इनेकास होता है, उसका फायदा कुछ और है। इसीलिए क्या करता हूं कि बाद हजरात हैं जो ये समझते हैं कि ये जितनी मजलिसें होती हैं बयानात होते हैं, तो उनसे आजकल वो चल गए हैं, रिकॉर्ड हो गए हैं, उनके टेप रिकॉर्डर, उनके कैसेट सारी दुनिया में फैले हुए होते हैं। अब तो इंटरनेट आ गया तो उसके जरिए सारी दुनिया में बात फैल जाती है। अब ये जो इतवार के दिन हमारी बात होती है, ये बैठे हैं यहाँ पर, ये इसको सारी दुनिया में फैला देते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब हम ये बात घर बैठे सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर के ऊपर सुन सकते हैं, कंप्यूटर पर सुन सकते हैं, इंटरनेट पर सुन सकते हैं, तो वहां जाने की क्या जरूरत है जहां ये बात हो रही है, कहां बात की जा रही है। तो भाई बात यह है कि जिस शख्स को के लिए बराह रात खुद आना किसी वजह से मुमकिन ना हो, दुश्वार हो, उसके लिए तो ये एक नेमत है कि कम अज कम दूर बैठे ही सुन ले। लेकिन जिसके लिए आना मुमकिन हो तो उसको जो फायदा आने से होगा वो कैसे सुनने से हरगिज नहीं। वजह क्या है कि एक तो मैंने अर्ज किया कि जब मजमा जमा होता है तो पता नहीं अल्लाह ताला किसकी तलब को कबूल फरमाए, और ये मजमे के पता नहीं कौन आदमी होता है कि जिसकी तलब की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला कहने वाले के दिल में भी ऐसी बातें डालते हैं जो सुनने वाले के लिए फायदा बनेगा। तो हकीकत में तो न उस्ताद कोई दे सकता है कोई चीज, न कोई शेख दे सकता है, न कोई वायु दे सकता है, न कोई खतीब दे सकता है, अता तो अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से होती है, वही मौती हकीकी। लेकिन वो किसी को वास्ता बना देता है, कोई इल्म पहुंचाने का, कोई दीन की बात पहुंचाने का, वो उस्ताद हो या शेख हो या कोई वायु खतीब हो, उसको वास्ता बना देता है। देने वाले तो वो है, और उनकी सुन्नत यह है कि तालिब की तलब जितनी मजबूत होगी अल्लाह तबारक व ताला कहने वाले के दिल पर भी वैसी ही बातें डालेंगे कि जो सुनने वालों के लिए फायदेमंद। हज़रत हाजी साहब, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब, महाजिर मक्की कद्दस अल्लाह ताला सिर्रहु, हमारे शेखुल मशाइख, उनसे किसी ने अर्ज किया कि हजरत हमें तो जो कुछ मिला आपसे मिला, जो दीन की नियामत मिली वो आपके जरिए मिली, आपसे ही मिली। तो फरमाया तो भाई तुम्हें तो ऐसे ही समझना चाहिए, तुम्हें ऐसा ही समझना चाहिए कि तुम्हें जो कुछ मिला इस वास्ते से मिला। लेकिन हकीकत यह है कि अगर तुम्हारे अंदर तलब ना होती और तुम्हारे अंदर जज्बा ना होता तो तन्हा मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर मिसाल ये थी, हजरत ने मिसाल इसकी ये थी कि एक औरत थी तो वो अपनी पड़ोसन के घर आग लेने के लिए गई। पहले जमाने में ये चूल्हे तो अब आ गए ना, तेल वेल के और इलेक्ट्रिक के और बिजली के, जरा कान भरोड़ा और वो चूल्हा जल गया। ये तो अब हुआ कैसा, पहले जमाने में वो लकड़ियां जलती थी और लकड़ियों के जरिए चूल्हे जलाए जाते थे, तो वो जलाना कोई आसान काम नहीं था। आधा घंटा तकरीबन तो जलाने में, चूल्हा जलाने में लगता था। तो उस जमाने में आग की बड़ी कीमत थी, आग का एक अंगारा मिल जाए तो वो अपने औरतें जो है कहीं पड़ोसन के घर से एक आग का अंगारा ले आई तो अपने यहाँ जला के लकड़ियों पर डाल दिया तो उससे लकड़ियां सुलग जाती। तो पड़ोसन के घर गई कि बीबी तुम्हारे घर में मेरा चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, जलाना है, तुम्हारे घर में कोई आग है? तो उसने कहा जी मेरे घर में तो नहीं है आग, मेरे चूल्हा भी ठंडा पड़ा हुआ। तो उसने कहा कि अगर बीबी अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारे चूल्हे के अंदर जो राख पड़ी हुई है इसको जरा कुरेद कुरेद के कुछ देखूं, हो सकता है कोई चिंगारी पड़ी हो अंदर, कभी देख लो। तो वो गई और उसने चूल्हे की राख को कुरेदना शुरू किया, तो कुरेद के देखा तो अंदर से छोटा सा अंगारा सिंगारी की शक्ल में मिल गया। उसने कहा बीवी मेरा काम हुआ, और वो लेके सिंगारी लेके और उसने अपने चूल्हे में डाल के चूल्हा सुलगा लिया। तो हजरत आई साहब की मिसाल देके फरमाते हैं कि देखो उसके चूल्हे में एक चिंगारी थी, अगर से दबी हुई थी, वह जाहिर नजर नहीं आ रही थी, तो उसके जरिए इतना बड़ा चूल्हा जल गया। लेकिन अगर चूल्हे में चिंगारी होती ना तो फिर वो पड़ोसन क्या करती और वो औरत क्या करती, ना चूल्हा जल सकता ना कुछ हो सकता। तो हजरत फरमाते हैं कि अगर किसी के दिल में तलब की चिंगारी होती है तो फिर शैतान उसकी कुछ मदद कर सकता है, उस चिंगारी की बुनियाद पर उस आग को भड़का सकता है, चूल्हा जल सकता है, आग हासिल हो सकती है। लेकिन अगर चिंगारी है ही नहीं सरे सरे तो फिर कितनी फूंक मारते रहो उसके, और तो फूंक मार के फूंक नहीं होती, हुआ करती थी फूंक मार के उसको जलाया करती थी। तो अगर चिंगारी है ही नहीं तो कितने हजार फूंके मारते रहो उससे चूल्हा नहीं जलेगा। तो हजरत ये फरमाते थे कि इसलिए अगर तालिब के पास तलब की चिंगारी होती है तो फिर उस अल्लाह तबारक व तआला उसकी बदौलत बयान करने वाले के कल्ब पर भी ऐसे बातें डाल देते हैं जो उसके हक में फायदेमंद होते हैं, ना हो चिंगारी तो कुछ भी नहीं। तो इस वास्ते फरमाया कि असल चिंगारी तो तुम्हारे पास थी, मैंने उसको हवा दे के अल्हम्दुलिल्लाह उससे काम बन गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तालिबों के तलब की बड़ी बरकत होती है, तालिबों के तलब की बड़ी बरकत होती है और उसका इनकास होता है आपस में साथ बैठने से एक दूसरे के ऊपर। तो उस मजमे में शिरकत की सआदत और उसमें बराह रास्त बैठने की सआदत और आपस में तालिबीन के अंदर अपने आप को शामिल करने की सआदत और उनकी बरकात लेने की सआदत, ये हाजिरी के बगैर महज दूर से सुनने से हासिल है, समझे ना। यूं अल्लाह ताला का करम है किसी की तलब सआदत इतनी बड़ी हो कि वो दूर से भी वैसे ही सवाब देते हैं जो यहां पर देने वाले, उनको कौन रोकने वाला। लेकिन सुन्नत के आम जो सुन्नत जारी है उसमें आने का फायदा, बैठने का फायदा। और भाई सच्ची बात तो यह है कि मैं तो ये सोचा करता हूँ, इसी नियत से हाजिरी भी दिया करता हूँ, जो पता नहीं इस मजमे में अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक किसका कितना किस दर्जा ताल्लुक है। कुछ बहित नहीं, कोई एक अल्लाह वाला बैठा हो मजलिस में और उसके अल्लाह ताल्लुक माल्लाह की बरकत से सबको फायदा पहुंचता है, सबकी मफरत हो। इस वास्ते और हुस्ने इत्तेफाक से ये दिन जो आजकल गुजर रहे हैं, ये ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन, ये भी अल्लाह तबारक व तआला के ने इनको अपने तरफ से खुसूसी हुरमत और तकद्दुस से नवाजा है। यकुम ज़ुल्हिज्जा से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जा तक बड़े अजीम अय्याम है। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमजान के बाद अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी दिन में अपनी इबादत इतनी पसंद और महबूब नहीं है जितनी ज़ुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में। ये सबसे अफजल अय्याम तो कौन से हैं? रमजान मुबारक, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये 10 दिन। और फिर उसकी तफसील भी बयान फरमाई कि इन दिनों में एक दिन का रोजा एक साल के रोजे से बराबर है और एक रात का जागना या एक रात में इबादत करना सब कदर की इबादत के बराबर है। अल्लाह ताला ने रखा। और भाई ये तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि यूं तो सारे ही दिन उसके बनाए हुए हैं, लेकिन किसी किसी दिन को किसी जमाने को अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात के साथ कोई नस्बत अदा फरमा दे, ये मेरे, ये महीना मेरा, ये दिन मेरा, ये अय्याम है। हालांकि है सब उन्हीं का, कौन सा दिन है जो उनका नहीं, कौन सा महीना है जो उनका नहीं, लेकिन किसी दिन या महीने या जमाने के बारे में ये फरमा देते हैं कि ये मेरा है। तो बस उस निस्बत की वजह से जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़्ल करम से अता फरमा दी, उस निस्बत की वजह से उस दिन, उस महीने, उस जमाने का दर्जा सारे दूसरे अय्याम पर बढ़ जाता है। तो ये वो दिन है, अल्लाह तबारक व तआला इनसे सही फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। क्या फरमाया? कोई भी इबादत, रोजा रख लो बहुत अच्छी बात, रोजा न सही नफली इबादतें, नफली नमाजें, तस्बीह, जिक्र, तिलावत, सदका, खैरात, अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई भी अल्लाह ताला की रजा वाला अमल, इस दिनों में जितना अल्लाह ताला को महबूब है और दिनों में इतना नहीं है। अल्लाह ताला इसके तौर पर रातों को जितना नमाज पढ़ने की तौफीक हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की तौफीक हो जाए, उसकी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, तो इसका एहतमाम करने की जरूरत है। तो ये भी एक, जो हम बैठे हैं अल्लाह ताला की रहमत से, उम्मीद है कि ये भी उसके इबादत का एक हिस्सा है, उसके जिक्र का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला इखलास अता फरमाए। और भाई ये दिन जो हैं इनको खास तौर पर अल्लाह की बड़ाई बयान करने के अय्याम करार दिया, तकबीर, अय्याम तकबीर, अल्लाह अल्लाह ताला सबसे, अल्लाह ताला हर चीज को जाने, इस बात का जिक्र, इस बात का ऐलान, इस बात का विर्द कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इन अय्याम को अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर से खुसूसी मुनासिबत है। तकबीर के कुछ हिस्से तो हैं जो सबको मालूम है कि अरफे के दिन 9 दिन जैसे तकबीर तशरीफ हर नमाज के बाद कहिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीफ है, हर नमाज के बाद वाजिब है कहना, बुलंद आवाज से कहना मर्दों को और स्पष्ट हल्की आवाज से कहना औरतों को, तो ये तो है ही। जब कुर्बानी करो तो क्या कहो? कुर्बानी करते बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, بسم الله اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھائی بہن، یہ تکبیر عید کی نماز پڑھنے جاؤ تو کیا کہتے ہوئے جاؤ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد، تکبیر اللہ کی بڑائی۔ خطبہ دو عید کا تو خطبہ 9 تکبیروں سے شروع کرو، پہلا خطبہ 9 تکبیروں سے، دوسرا خطبہ 7 تکبیروں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 9 مرتبہ، اور خطبے کے دوران بار بار کہتے رہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد، بار بار کہتے رہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ کلمہ فرماتے تھے، یہ تکبیر، قدم پر تکبیر۔ اور ایک تکبیر ایسی ہے کہ جو ہمارے زمانے میں چھوٹ گئی، وہ یہ کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، اس میں ایک تکبیر اس طرح مسلمانوں میں اس کا دستور رہا ہے، رواج رہا ہے کہ ویسے ہی چلتے پھرتے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد۔ اور یہ بھی کہ بازار میں گئے تو بلند آواز سے تکبیر کری، دوسرے لوگوں نے سنی، انہوں نے اس کو دہرایا، یہاں تک کہ بازار گونج اٹھتے تھے تکبیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب منا کے ایام میں علاوہ تکبیر تشریف کیا تو نماز کے بعد کہہ جاتے، جب بازار میں نکلتے تو زور سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ان کی آواز لوگ سنتے بازار میں بیٹھے ہوئے، وہ جواب دے دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جواب دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ پھر بعد میں کافی عرصے تک جاری رہا کہ یہ پورے 10 دنوں کے دوران لوگ جب سڑکوں پہ بھی ایسے تکبیر پڑھ رہے ہیں، بازاروں میں بھی پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جواب دے رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے، کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بازاروں کے اندر چلتے پھرتے تکبیر کہتے رہتے ہیں زور سے، تو کیا کہیں؟ کہنا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہاں کہنا چاہیے۔ تو یہ اگرچہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں رہا، تو کچھ رواج ختم ہی سا ہو گیا، بلکہ بالکل ہی ختم ہو گیا، لیکن یہ بھی اس زمانے کی تکبیرات کا ایک حصہ ہے جو مدتوں مسلمانوں کے معاشرے میں جس کا رواج رہا ہے۔ اب اگر کوئی اچانک کہیں شروع کر دے گا تو اس میں اندیشہ ہے کہ ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ ہماری قوم جو ہے یہ ماشاءاللہ وسائل پیدا کرنے اور اس کے اندر اس کو وجہ رضا بنانے میں استاد ہے، جو بھی کوئی اگر آدمی یہ کوئی ایسا موقع مل جائے اس کو اشار پھیلے، کچھ لوگوں میں سیمی گوئیاں ہوں، کچھ بحث مباحثے کا دروازہ کھلے، کوئی فتویٰ بازی کا سلسلہ چلے، تو بڑا مزہ آتا ہے اس کام کے اندر۔ لہذا اگر کوئی آدمی آج یہ شروع کر دے گا کہیں بازار میں بغیر پہلے سے کچھ، اس مسئلہ ہو جائے کہ جی جو لوگ کر رہے ہیں جائز ہے کہ نہیں ہے، بدعت ہے سنت ہے کیا ہے، اور بحث و باسا ہونے गया और जाएगा और एक कितना खड़ा हो जाएगा। तो एक चीज जो कि अच्छी हो लेकिन कोई वाजिब ना हो, उस काम को शुरू करने से अगर फितना फैलने का अंदेशा हो तो तर्क कर देना चाहिए। लेकिन जहां फितना ना हो, अपना माहौल हो, कोई फितने का अंदेशा ना हो, तो वहां ऐसा करने में कुछ हर्ज नहीं। बारह कह ही रहा था कि तकदीर इन अय्याम हर चीज में तकदीर, चलते फिरते तकदीर, बैठते तकदीर, नमाजों के बाद तकबीर, नमाज ईद के खुतबे में तकबीर, नमाज ईद में तकबीर, कुर्बानी करते हुए तकबीर, हर जगह तकबीर तकबीर। इससे मालूम होता है कि ये अल्लाह जल्ल जलालुहु की बड़ाई बयान करने के लिए अल्लाह तबारक बता रहे इन दिनों को कुछ खुसूसी मकाम अता करो, अल्लाह की बड़ाई बयान। इसलिए बहुत से बुजुर्गों ने उनको कहा है कि ये अय्यामुत तकबीर है, ये अल्लाह की बड़ाई बयान करने के दिन। अल्लाह की हिकमतें कौन उसका इहाता कर सकता है कि इन दिनों में खास तौर पर तकबीर इन दिनों के अंदर उसको इतनी अहमियत किस वजह से दी गई, तकबीर ही को क्यों दी, और बहुत से अधिकार हो सकते थे तकबीर को, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं हम क्या, हम उसकी हिकमतों मसलहतों का यहां तक कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूं समझ में आया, अगर सही है तो अल्लाह ताला की तरफ से, गलत है तो मिलने वाले शैतान, वो ये कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला क्या माना है, अल्लाह सबसे बड़ा है, इस कायनात में सबसे बड़ी जात अल्लाह, वो हर चीज से बड़ा, हर वजूद से बड़ा, हर काबिल एहतराम मखलूक से बड़ा, हर चीज से बड़ा, हर काबिल तामील जात से बड़ा। तो जब वो बड़ा है, उसकी बड़ाई सारी कायनात पर मुहित है, सारी कायनात की चीजों से ज्यादा है उसकी बड़ाई, तो इसका ऐलान एक ऐसे मौके पर किया जा रहा है कि इन अय्याम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अजीब व गरीब किस्म की इबादात के लिए मखसूस फरमाया है। और जो इबादतें हैं ना, उनका कुछ उनकी कुछ हिकमत मसला समझ में आती है। जैसे नमाज है तो भाई ठीक है, अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला का सजदा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला की जात के आगे सजदा हो रहा है। सदका खैरात है तो उसकी हिकमत समझ में आती है, भाई गरीबों का फायदा हो। लेकिन इस जमाने में जो इबादत रखी गई है हज की, वो ऐसी इबादत है कि अगर खालिस अकल की मीजान पर तोल कर देखना चाहो, अकल के तराजू में तोल कर देखना चाहो, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि एक घर के जित चक्कर लगा रहे हैं लोग, जितना चक्कर लगाओगे उतने तो आप, चलो वो भी गनीमत है, अल्लाह मियां का घर है उसके गेट चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन दो पहाड़ियां हैं उसे भागे जा रहे हैं, जिसे देखो उधर भागे जा रहे हैं, सफा मरवा के दरमियान पांच चक्कर लगा भागे जा रहे हैं, तो सही कर रहा है तो क्या क्यों भाग रहे हो भाई, ये सात चक्कर किस लिए लगा रहे हो, क्या जी हाजरा के ने यहां दौड़ लगाई, अरे भाई उन्होंने तो पानी की तलाश में लगाई थी, पानी नहीं मिल रहा था तो पानी तलाश करने के लिए लगाई थी, तुम क्यों भागे जा रहे हो, तुम्हें कहां की तलाश है जिसके पीछे दौड़ रहे हो। यहां पर हमारे हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, शहीद मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो सुनाते थे कि एक मरतबा मैं सही कर रहा था सवा मरवा के दरमियान, तो एक औरत को देखा वो भी भाग जा रही है, वो मिलैन अखदरैन के दरमियान दौड़ लगाते हैं तो वो भी भाग रही। तो मैंने उससे कहा, वो पंजाब की थी, तो मैंने उससे कहा कि बीबी बीबिया नहीं भाग दिए थे, बीबिया औरतें जो है यहाँ पर नहीं दौड़ती, और औरतों को हुक्म नहीं है दौड़ने का, मर्दों के लिए है दौड़ना, औरतें तो वैसे चली जाती। तो उसने जवाब में कहा कि तो बीबी हाजरा तेरा बाप थी। तो क्या तेरा बाप थी जो उसको वो तो दौड़ी और हमें मना कर दौड़ने से। तो वापस अगर असल से देखो तो असल तो चली थी हर हाजरा से, तो औरत थी। अब औरतों को तो मना कि तुम दौड़ो नहीं, तो जा रहा है दौड़ इसके दरमियान। तो अगर खालिस अकल की तराजू में तोल के देखो तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। 25 लाख अफराद जो हैं वो जाके मीना में डेरे डाल दिए उन्होंने 8 तारीख को, ना वहां रमी है ना कुछ और इबादत है। अच्छे खासे मक्का मुकर्रमा में रह रहे थे, 1 लाख नमाजों का सवाब मिल रहा था हर नमाज के, ताकि छोड़ो मस्जिद हराम को और जाके वहां पढ़ जाओ मीना में। क्या करें जी वहां पर, कुछ भी ना करो, 5 नमाजें पढ़ो हरम छोड़ के, वहां वीराने में पढ़ो जाके नमाज। तो कैसा वही हरम में पढ़ रहे थे, 1 लाख नमाज का सवाब था, वो छोड़ छाड़ के यहां पढ़े। फिर क्या करो, यहां से भी भागो और अरफात जाओ, वहां दिन में डेरे डालो। न वहां काबा है, न बैतुल्ला है, न मुल्तजम है, न मीज़ान रहमत है जो दुआएं मांगने की जगह थी, न मकाम इब्राहिम है, खुला मैदान है, वहां जाकर मांगो। जोर असर की नमाजें इकट्ठी पढ़ो, खड़े होकर दुआएं मांगो। तो अकल से सवरिया वापस वही चलो, रात यही रह लेते नहीं, यहां नहीं मुजलफा जा, मीना चले जाते वहां खेमे लगे हुए थे, वहीं चले जाते वहां पर जाकर आराम कर लेते, वहां रात गुजार लेते, नहीं नहीं रात वहां नहीं गुजार, मुजलफा में गुजार, खुले आसमान से कोई खेमा नहीं, वहां वहां गुजार। क्या करेंगे वहां, कुछ नहीं गुजारो, मगर वर्षा साथ पढ़ो, सुबह को उठ के आफ्ताब से पहले खड़े होकर वकूफ करना, फिर वहां से कहां जाओ, मीना जाओ। मीना में क्या करेंगे, 3 दिन ठहरे रहो, क्या करेंगे 3 7 कंकरियां मार, तो 25 लाख आदमी उस दीवानावार अमल में लगा हुआ, जिसे देखो रात को मुजलफे में कंकरियां चुन रहा है, अच्छा खासा माकूल आदमी और पढ़ा लिखा और मुहज्जब और शरीफ और दौलतमंद और सरमायादार और आलिम और सूफी और बुजुर्ग सब रात को कंकरियां चुन रहे हैं, साथ एक जगह की सब मिला जो पता नहीं कत्तर हो जाती है कितनी कंकरियां चुन रहे हैं रात। सबसे अहम काम मुजलफे में यह है कि कंकरियां चुन के रखो भाई, क्या करोगे कि वो पत्थर में मारेंगे वहां। तो वहां जाके पूरी फॉर्म इसी काम पे, 25 लाख आदमी उस पत्थर में, 7 कदम अल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई हमने रमी हो गए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खुश इत्मीनान हो रहा, क्या हो गया वो 7 कंकर मार दिए उस जगह लग, बड़ा इत्मीनान। सब क्या हो रहा है, कोई बात अगर देखो तो अकल में आती नहीं। उस पत्थर पर 7 कंकरियां मारने से क्या मिला, क्या हासिल हुआ, और वो तो अब बिछड़े हैं पत्थर, अब जाके मार लो उनको, जिसको लोग शैतान कहते हैं शैतान है, हालांकि शैतान का नहीं है वो एक अल्लाह मैंने अलामत बना दी। तो अगर वो शैतान है तो आज भी मौजूद तो मारियो, आज आज मारोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा गुना हो जाए शायद। कि अपनी तरफ से तुमने एक इबादत बना ली जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर नहीं की। उन्हीं दिनों में है, बस 3 दिन ये काम था। तो कोई अकल में आने वाली बात नहीं। जो इबादत मुकर्रर की है वो अपनी हमारी समझ से बालातर है, अकल से की मिजान में बजाहिर नहीं उतरती। ऐसी ही जो लोग वहां नहीं है, बाहर है, कुर्बानी की इबादत, कुर्बानी की इबादत को भी अगर खालिस अकल से, जो वही की रहनुमाई से आजाद हो, उस अकल से अगर समझना चाहो तो बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि कुर्बानी का मतलब क्या है, गले पर छुरी फेर दो, जिसमें इधर तुमने छुरी फेरी निकला, इबादत बताओ। अब गोश्त से कोई ताल्लुक नहीं होता, गले पर छुरी फेरते ही अदा हो जाती है। जब तुमने छुरी फेर दी, अल्लाह तुम्हारा गुजारा करता, तुम्हारी अदा हो। अब अल्लाह ताला फरमाते जाओ ले जाओ, तुम्हें जाओ, वो तुम्हारा खाओ, दूसरों को खिलाओ, जिसको चाहो करो, जो चाहो करो, तुम्हारा। हम तो ये देखना चाह रहे थे गले पर छुरी फेर दो बस, और कुछ। तो इबादत उससे अदा हो जाती है, कुर्बानी। तोहफा कबूल होगा, तो जो तोहफा लाने वाला होता था वो फिर वो वापस भी ले जाता था, और फिर भी ये समझा जाता था कि बादशाह जोर से तोहफा बेचते हैं, क्योंकि बादशाह ने हाथ रख के कबूल कर। तो हमारे हजरत वाला हजरत फरमाते हैं कि हम जो कुर्बानी करते हैं गले पे छुरी फेरी, अल्लाह ताला ने हाथ रख उसके ऊपर कि चलो हमने कबूल कर ली तुम्हारी जो कुर्बानी, अब तुम ही ले जाओ, खुद खाओ खिलाओ, तुम्हारी कुर्बानी पर उससे कोई खलल वाकई नहीं। तो भाई ये क्या हो रहा है कि जिसे देखो गले पर छुरी फेर रहा है, तो अकल में देखो तो शायद अकल में आना मुश्किल हो इसका। क्यों? इसलिए कि लोग एतराज करते हैं, जो नावाकिफ है, नावाकिफान राज हैं, वो ये एतराज करते हैं कि जी करोड़ों अरबों रुपया कौम का खून की शक्ल में नालियों में बह जाता है, कितना खर्चा होता है पूरे मुल्क में देखो कुर्बानी के ऊपर, कितना खर्चा होता है, कितना खर्चा करके खून नालियों में बह गया, ये तो अकल में आना मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं अनाल अल्लाह लुहूमहा वला दिमाग़ वला मार्ग गोपाल ने फरमाया करो, चाहे तुम्हारी समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, अकल में बात आ रही हो ना आ रही हो, हिकमत समझ में आ रही हो ना आ रही हो, फायदा नजर आ रहा हो या नजर ना आ रहा हो, हमने कह दिया है लिहाजा करो। तो इस सारे अमल से दर हकीकत जो बात दिल में बिठानी मकसूद है वल्लाह तआला आलम, वो ये कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, न कोई हिकमत बड़ी है, न कोई मसलहत बड़ी है, न कोई अकली फायदा बड़ा है, न कोई अकली फायदे समझाने वाली जात बड़ी है, बड़ी है तो अल्लाह की जात है, वो जिसका जिस बात का हुक्म दे दे बस उसके आगे सर तस्लीम, हम किए बगैर चारा नहीं, चाहे देखने में वो मजनूनाना हरकत लग रही, चाहे देखने में वो पागलपन नजर आ रहा हो, लेकिन जब उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया वो अमल मुकद्दस ही मुकद्दस है, पाक ही पाक है, मकबूल ही मकबूल है, माकूल ही माकूल है, जब उन्होंने कह दिया कि ये करो, कह दिया कंकरियां मारो, तो कंकरियां मारना ही माकूल है, वही मकबूल, वही बाई से अजर है, वही और जब वो किसी चीज से रोक दे तो उससे रुक जाना मकबूल अमल है, उससे रुक जाना ही इंसान के लिए माकूल अमल, माकूल तर्ज अमल है। ये सब सिखाना मकसूद है इस सारे इबादतों के निजाम से जो अल्लाह ताला ने इन दिनों में रखा है। ये उस वक्त तक दिल में नहीं बैठेगी बात जब तक अल्लाहु अकबर दिल में रचा बसा हुआ ना हो, अल्लाह तबारक व तआला के साथ सबसे बड़ी है, वो जो हुक्म देगी वो हुक्म सबसे बड़ा है, वो जो तरीका बताएगी वो तरीका सबसे बड़ा है। इसलिए इसका इन दिनों में तकबीर ही तकबीर है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर का खास एक अय्याम अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है कि ये हकीकत अल्लाह ताला के जुबरियाई की हकीकत दिलों में बैठे और उसका जो मंतिकी नतीजा है इत्तिबा अल्लाह के अहकाम की, उसके हुक्म के पीछे चलना, उसके हुक्म को अव्वलियत, सारी दुनिया की हिकमतों मसलहतों और फायदों को उसके हुक्म पर कुर्बान, ये चीज है जो पैदा करनी मकसूद है। और भाई जब ये बात पैदा हो जाए अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से हम हर मसाल हर मसला और अपना हर फायदा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर कुर्बान, तो जब ये बंदा ये बंदे में ये खासियत पैदा हो जाती है उस वक्त होता है वह इंसान कामिल, उस वक्त इंसान कामिल बनता है जबकि उसके अंदर यह खासियत पैदा हो गई हो कि मैं वो उसका अखलाक उसका किरदार उसकी का दूसरों के साथ तर्ज अमल उसकी मुआशरत उसके मामला उसके अखलाक हर चीज अल्लाह ताला के दीन के लेकिन अल्लाह तबारक व तआला Yeah, I'm not laughing. I'm not laughing. Yeah, I'm not laughing. اللہ ہمارے ملک کو جب امنی کو خانہ جنگی کو دور کروا دے یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رضا کے مطابق امن و امان قائم کر دے اللہ اپنی رحمت سے دشمنوں کے قابو کر دے ہمارے سے دور فرما دے یا اللہ دشمنوں کے قابو اسلام کے خلاف چل رہے اے اللہ ان کو ناکام و نامراد یا ہمیں اپنی عبادت اللهم استر عوراتنا وعافنا اللهم استر عوراتنا وعافنا اللهم استر عوراتنا يا الله تمام حاضر وحاضرات تمام جايز يا الله سبتو پریشانی کو دور فرما سبتو مشکلات کو آسان کر یا الله جن کن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے کہ سب کو ثنا کی رحمت دے ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا کر یا الله سب کی دلی مرادوں کو پورا کر اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم هيا انا ابن اليد سهل في جوار الدرسات انا اشترك في الموت وفي بيروت في مارا انت سهل في جوار الدرسات يا الله اشترك 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 في جوار الد